ஓம் சாந்தி. பிராமன் ஜீவன் கா மெடல் ஸ்ரேஷ்ட ஸ்திதி. துனியா மே விசேஷ ஜோ ஹுஷார் வித்யார்த்தி ஹோதே ஹே, होशियार खिलाड़ी होते हैं और होशियार सैनिक होते हैं, उन्हों को मेडल प्राप्त होता है. जो अपने क्षेत्र में प्रतिभाशाली प्रतिभावान होता है वो स्वतः ही मेडल प्राप्त करते हैं. इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा मनुष्य से देवता बनने के लिए हमें मुख्य चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और जो विद्यार्थी चारों विषयों में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं उन्हों को श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल परमात्मा से प्राप्त होता है. कहते हैं जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्तुति वैसी उपस्थिति होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है. तो संगम युग में जो आत्माएं श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल परमात्मा से प्राप्त करते हैं, वास्तव में वो महान भाग्यशाली कहलाते हैं. पावा के पास आने के बाद हमारा लक्ष्य हो हमें बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनानी ही है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी क्यों न पड़े. ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे मन में सदा रहे, और ऐसे श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल को प्राप्त करने के लिए कुछ एक बातों पर विशेष अभ्यास करने की आवश्यकता है. उसमें भी मैं आपके साथ 10 बातें शेयर करना चाहूंगा, जिन बातों पर अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो आप श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल अवश्य ही प्राप्त करेंगे. उसमें पहली बात है, श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ स्थिति बनती है. हमारे मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं वो सदा श्रेष्ठ संकल्प हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है. अगर कभी साधारण या व्यर्थ संकल्प चलते भी हैं तो उस समय हमें ज्ञान और योग के बल से व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना है। अगर किसी के प्रति नकारात्मक संकल्प चलते भी हैं, सारे दिन भर में जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं और कभी ऐसे नकारात्मक संकल्प चलते हैं, उस समय विशेष आत्मिक भाव का अभ्यास करें और अपने तीसरे नेत्र पर सकारात्मकता का चश्मा पहनाएं तो स्वतः ही हर आत्मा के प्रति सकारात्मक संकल्प हमारे मन में चलते रहेंगे और धीरे धीरे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बढ़ता जाएगा। परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। दूसरी बात, श्रेष्ठ बोल से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। हमारे बोल प्रेरणादायी बोल हो, उमंग उत्साह देने वाले बोल हो, वरदानी बोल हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमने देखा है ब्रह्मा बाबा के जो बोल हैं वो हमेशा श्रेष्ठ बोल होते थे, इसलिए उनको महावाक्य भी कहते थे। कभी कभी हंसी मजाक में हम कुछ बोल मुख से बोल देते हैं जिससे वाणी का बल कम होता है और समय का जो खजाना है वो नष्ट होता जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमारे बोल प्रेरणादायी हो, श्रेष्ठ हो, सुखद हो, सुकून देने वाले हो, क्योंकि बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। अगर कभी हम एकदम नए व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हैं तो वो कैसे बोल बोलता है उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व को परख लेते हैं। उदाहरण बताता हूं, एक बार राजा सुबेदार और सिपाही तीनों घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने गए थे। जैसे जंगल में गए उन्होंने घोड़े को बांधा एक स्थान पर, घोड़े के पैर में घुंघरू थे, लेकिन जैसे शिकार करके वो वापस आए तो घोड़ा वहां नहीं था। तो राजा को संकल्प चला घोड़े को ढूंढने के लिए सिपाही को भेजें। तो सिपाही जैसे घोड़े को ढूंढने के लिए गया, रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा था। सिपाही ने उससे पूछा, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू के आवाज तो नहीं आए? उसने कहा, नहीं भाई, देर होने के कारण राजा ने सूबेदार को भेजा घोड़ा ढूंढने के लिए। सूबेदार भी उसी रास्ते से आगे बढ़ता गया और जब वो अंधा व्यक्ति मिला तो वो पूछने लगा, बाबा जी यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू के आवाज तो नहीं आए? उसने कहा, नहीं भाई, देर होने के कारण स्वयं राजा घोड़े ढूंढने के लिए निकल पड़ा, उसी रास्ते से जाने लगा। और जब वो अंधे व्यक्ति को मिले तो उन्होंने कहा, महात्मा जी यहां से घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं राजन। तो राजा चौंक गया कि इसको दिखाई नहीं देता है, इसने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? उसने उससे पूछा, आपको कैसे पता चला मैं राजा हूं? उसने जवाब दिया, राजन आपके बोल इतने सम्मान देने वाले थे, इतने श्रेष्ठ थे, तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति जरूर कोई बड़ा होगा, ये मैंने परख लिया। तो कहने का भाव है, हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं, हमारे श्रेष्ठ स्थिति की पहचान देते हैं। इसलिए हमारे मुख से सदा श्रेष्ठ बोल निकलते जाएंगे तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। तीसरी बात है, श्रेष्ठ दृष्टि से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। कहते हैं, नजर बदली तो नजारे बदलते हैं। जब हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि होती है, रूहानी दृष्टि होती है, सिविलाइज दृष्टि होती है, तो सामने वाले व्यक्ति सुकून महसूस करते हैं। और जिनकी दृष्टि बहुत ऊंची होती है उसका लोग दृष्टांत भी देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि बहुत ऊंची थी, जिस कारण बाबा को किसी बच्चे का अवगुण, किसी भी बच्चे की कमी कमजोरी नजर नहीं आती थी। उसके कारण बाबा सभी पर प्यार ही बरसाते थे। दुनिया में कहते हैं, दुनिया वाले लिखते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हम तो ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं, ब्राह्मण कुल के ऊंची शान है। ऐसे ऊंचे ब्राह्मण कुल वाले हम बच्चे हैं तो उनके बोल भी ऐसे सुखदाई हो, प्रेरणादाई हो, वरदानी हो, उनकी दृष्टि भी ऐसी निर्दोष दृष्टि हो। तो ऐसी निर्दोष दृष्टि से स्वतः ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है। चौथी बात है, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। हमारी वृत्ति सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वास्तव में वृत्ति किसको कहते हैं? मान लीजिए जब हम मुरली सुनने के लिए बैठते हैं तो हमारे बाह्य मन में कुछ संकल्प चलते हैं, लेकिन उस समय साथ साथ जो सुसुप्त मन होता है उसमें कुछ और संकल्प उठने लगते हैं, तो सुसुप्त मन का कनेक्शन हमारी वृत्ति के साथ होता है। और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हमारा सुसुप्त मन जागृत अवस्था में होता है, तो अमृत वेले हमें विशेष अभ्यास करना है कि हमारे सुसुप्त मन में ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को संग्रहित करें, श्रेष्ठ विचारधारा चलती रहें। इसके लिए अमृत वेला पावरफुल करना जरूरी है, लेकिन शक्तिशाली अमृत वेला करने के लिए रात्रि को सोना कैसे सोना है ये हमें स्पष्ट होना चाहिए, हमारी सोने की विधि यथार्थ होना चाहिए। एक बार बाबा ने कहा था कि सोने की विधि ये है कि सारे दिन की दिनचर्या बाबा को बता दो और कोई सूक्ष्म बोझ है वो भी सूक्ष्म बोझ बाबा को दे दो, मन बुद्धि को एकदम हल्का करके विश्राम करो। अगर चाहें तो उस समय थोड़ा सा मुरली का चिंतन भी कर सकते हैं, फिर बाबा की गोदी में हमें सोना है। इससे विधि पूर्वक अगर हम सोते हैं तो दूसरे दिन हमारा अमृत वेला बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इस अभ्यास से हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है, जिससे हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनती जाती है। श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने के लिए पांचवी बात है, श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ स्थिति बनती जाती है। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ कर्म करते जाना, और श्रेष्ठ कर्म करने की विधि है लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने खड़े होकर हम अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मों की भेंट करें, क्या मेरे कर्म इनके जैसे महान हैं या नहीं, उसको चेक करें और चेंज करते रहें, तो स्वतः ही कर्म हमारे श्रेष्ठ होते जाएंगे। दूसरी बात, कमल आसन धारी बनकर कर्म करते चलें तो कर्म हमारे दिव्य बनते जाएंगे, और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अनेकों को प्रेरणा मिलती रहेगी, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का खजाना श्रेष्ठ स्थिति संगम युग में बनाने में मदद करता ही है, और साथ साथ भविष्य के लिए श्रेष्ठ संस्कार के रूप में हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए संगम युग में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को बढ़ाते रहें तो स्वतः ही श्रेष्ठ स्थिति हमारी बनती जाएगी। छठवीं बात है, श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ स्थिति बनाना। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इससे श्रेष्ठ पढ़ाई सारे क्लब में कभी भी नहीं हो सकती है। तालियां बजाओ जरा एक बार अच्छे तरह से, क्योंकि हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान साकार रूप में आकर हमें पढ़ाई पढ़ाएंगे, लेकिन साकार रूप में वो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जब हम मुरली का चिंतन करते हैं तो कई गुह्य राज बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जाती है, और जितना मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान का बल आत्मा में बढ़ता है, जिससे हमें दो विशेष दिव्य शस्त्र प्राप्त होते हैं, अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस। ये दो दिव्य शस्त्र जिनके पास होते हैं वो सारे दिन भर में माया के राज में रहते हुए भी विजय स्थिति की अनुभूति करते हैं, अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल होते हैं। तो इसलिए पढ़ाई पर हमें विशेष अटेंशन देते रहना जरूरी है। सातवीं बात है, आत्म अभिमानी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति बनाना। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो देह से हमारा रिश्ता कट जाता है, संबंध कट जाता है, देह से हम न्यारे होते हैं। जब हम देह से न्यारे होते हैं, तो स्वतः ही देह की दुनिया से, देह के संबंधों से और देह के पदार्थों से न्यारे होते हैं, इस दुनिया से न्यारे हो जाते हैं। और परमात्मा की याद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए गुप्त ही गुप्त हमारा विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट देखें और आत्मा के जो 7 निजी गुण हैं, एक एक गुण की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते रहें, तो आत्म अभिमानी स्थिति हमारी विकसित होती जाएगी और स्वतः श्रेष्ठ स्थिति की ओर हम आगे बढ़ने लगेंगे। स्व स्थिति अर्थात स्व की स्मृति में टिकना, स्व की स्थिति में टिकना, आत्मिक स्थिति में टिकना, तभी हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है। 8वीं बात है, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए स्वमान का अभ्यास बढ़ाते चलें, क्योंकि जब हम स्वमान के सिंहासन पर बैठते हैं, आत्मा स्वमान के सिंहासन पर बैठती है, तो एक रूहानी नशा, एक अलौकिक मस्ती हमें चढ़ने लगती है और उमंग और उत्साह के पंख हमें मिलते हैं, जिसके आधार से हम ऊंची उड़ान उड़कर इस साकारी दुनिया से पार हो जाते हैं, निराकारी दुनिया की ओर बाबा के पास सहज ही पहुंचने लगते हैं। तो आत्मा का अभ्यास हमें इस देह से न्यारा करता है और स्वमान का अभ्यास इस देह से परे ले जाता है, ऊंचा ले जाता है, जो बाबा की याद करने के लिए मददगार बनता है। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाना अगर हम चाहते हैं, तो निरंतर स्वमान धारी बनते रहें। स्वमान धारी बनना अर्थात जो भी स्वमान का पॉइंट हम लेते हैं, मान लीजिए विश्व कल्याणकारी मैं आत्मा हूं, ये पॉइंट आपने लिया, तो उस पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है। स्वराज अधिकारी आत्मा की स्थिति बढ़ती जाती है, तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, मेरे कर्म कैसे हो, बोल कैसे हो, संकल्प कैसे हो, व्यवहार कैसा हो, इस पर अच्छी तरह से मंथन करें और उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें। इसको कहते हैं स्वमान धारी अनुभव करना, उस स्वमान का स्वरूप बनना। तो जैसे जैसे हम स्वमान का स्वरूप बनते हैं, तो बहुत ईश्वरीय नशे में झूमते रहते हैं, तो ये साकारी दुनिया के प्रलोभन हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। और 9वीं बात है, श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने के लिए परमात्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते चलें। बाबा ने कहा है यथार्थ याद अर्थात परम धाम में बाबा को याद करना। तो निराकारी दुनिया में बाबा के निराकारी स्वरूप को हमें देखना है, और मैं निराकारी आत्मा बाबा के समक्ष बैठी हूं ऐसा अनुभव भी हमें करना है। तो इतने विशाल परम धाम में मैं निराकारी आत्मा निराकारी बाप के सामने बैठी हूं और अपने दिव्य दृष्टि से बाबा को देख रही हूं, तो बाबा के समीप बैठ जाएं, परमात्म अभिमानी बनना अर्थात परमात्मा के संग का अनुभव करना, उनके कंपनी में बैठ जाना। तो जब हम बाबा के संग में बैठते हैं उस समय तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम परमात्म मिलन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो तीन बातें हमें चेक करना है। पहली बात, ज्ञान सूर्य बाबा के साथ हम बैठते हैं तो कभी भी हमारे मन में हिचकिचाहट ना हो कि बाबा तो पवित्रता का सागर है, मुझ आत्मा पर अपवित्रता के काले धब्बे हैं, कैसे मैं आत्मा बाबा के समीप बैठ सकूंगी। नहीं, बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के अति समीप बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाट से बड़े मस्ती से हमें बैठना है। दूसरी बात, कभी भी बाबा से हमें मांगना नहीं है। भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। बाबा के सामने जब हम बैठें तो अधिकारी स्थिति में बैठें कि बाबा के जो खजाने हैं उन पर मेरा पूरा अधिकार है। तो अधिकारी स्थिति में जब हम बैठते हैं तो मिलन का आनंद लेते हैं और उनके खजानों को हम स्वयं में भरने लगते हैं। और तीसरी बात, बाबा के समक्ष जब बैठते हैं तो कभी भी स्वयं को साधारण आत्मा नहीं समझना है। साधारण आत्मा समझेंगे तो बाबा से शक्तियां भरपूर मात्रा में नहीं भर सकेंगे। तो बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में जब हम बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है और शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण करने लगते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देकर ही परमात्म मिलन का आनंद हमें लेना है। और दसवीं बात है कि सारे दिन भर में बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन किसी भी युक्ति से हमें हमारी बुद्धि की तार बाबा के साथ जोड़कर रखनी है। उसके लिए आवश्यक है सारे दिन भर में फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा कुछ नवीनता चाहता है। बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करेंगे तो कभी थोड़ा बोर हमें अभ्यास हो सकता है, लेकिन हमें अमृत वेले से लेकर विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहना है। उदाहरण के तौर पर अमृत वेले बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला घंटा हमें बाबा के साथ बाप का संबंध अनुभव करना है। उसके बाद जब हम मुरली सुनने के लिए आते हैं उस समय टीचर का संबंध अनुभव करना है। उसका आनंद लेना है। और जब मुरली से बाबा के घर से बाहर जाते हैं मुरली सुनकर या अपने घर से बाहर जाते हैं सेवा क्षेत्र पर, तो बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है, बाबा का वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करना है और सारे दिन भर उनकी ही छत्र छाया में हमें चलना है। उसके बाद सारे दिन भर में हमें खुदा दोस्त के रूप में भगवान को अपने मित्र के रूप में अनुभव करना है, उनकी कंपनी का आनंद लेना है। कभी बाबा को माँ के रूप में अनुभव करना है, माँ का जो प्यार है, माँ की ममता बाबा से अनुभव हमें करना है, तो लौकिक माँ से जो लगाव होता है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। तो कभी बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करना है, जो भी बाबा को वर्षे के रूप में हमें देना है अधिकार वो हमें देना है। कभी साजन के रूप में हमें अनुभव करना है, मैं आत्मा सजनी, बाबा मेरा साजन है और परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं उनके साथ मधुर मिलन मना रही हूँ। कभी सर्जन के रूप में अनुभव करना है, कोई ऐसा कड़ा संस्कार होता है उसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमें दिल से कष्ट नहीं होना है, बाबा को रूहानी सर्जन के रूप में आह्वान करके उसकी सर्जरी करना है और उस बीमारी से मुक्त हो जाना है। कभी बाबा को गाइड के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं। मन जब मूंझ जाता है तो विधा में हम स्वयं को अनुभव करते हैं, बाबा को बुलाओ गाइड के रूप में अनुभव करो। और बाबा त्रिकालदर्शी हैं, जो हमें गाइडेंस देंगे उसमें हमारा कल्याण जरूर है। कभी बाबा को रक्षक के रूप में अनुभव करो, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा बैकबोन है, मेरा रक्षक है, तो ऐसा हम अनुभव करेंगे तो कभी भी हमें किसी भी प्रकार का डर या भय अनुभव नहीं होगा। और कभी बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करो, बाबा का धर्मराज के रूप में डर होना ये शुभ बात है, क्योंकि वो डर होने से हमारे से कोई भी छोटा मोटा विकर्म नहीं होगा, पाप का बोझा नहीं बढ़ेगा। तो कहने का भाव है, सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके बाबा के साथ मन मना भोग का मंत्र का जाप करते रहें, बुद्धि की तार जोड़कर रखें। इसके साथ मधुबन में जो शांति स्तंभ हैं, ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति की यादगार हैं। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से श्रेष्ठ स्थिति का मेडल प्राप्त किया है, तो शांति स्तंभ अर्थात ज्ञान का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ और पवित्रता का स्तंभ और शांति का स्तंभ, ऐसी स्थिति मुझे बहुत ऊंची बनाना है और अच्छल अडोल स्थिति बनाना है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं, उनके कदमों पर कदम रखते हुए मुझे ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, ऐसा हम निरंतर प्रयास करते रहें। शांति स्तंभ के बाजू में मैं खड़ा रहता हूँ और बाबा की जैसी स्थिति बनाने की प्रेरणा लेता रहता हूँ और सदा आगे बढ़ता रहता हूँ। तो ऐसा पुरुषार्थ हम सदा करते रहें। तो बाबा के पास आने के बाद अगर मैंने श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनाई तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा समझेंगे। क्योंकि चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट हमारा योग का सब्जेक्ट है, हम सभी की योगाभ्यास में रेस है। तो इस रेस में हमें केवल दौड़ना नहीं है लेकिन प्राइज विनर बनना है, श्रेष्ठ स्थिति का मेडल लेना है। इसलिए योगाभ्यास को निरंतर गहराई से बढ़ाते चलें और ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली को भी बढ़ाते चलें। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ योग की स्थिति का अनुभव करने जा रहे हैं, क्योंकि अनुभव के बिना इतना बाबा जो श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं वो अधूरा हो जाता है। तो चले हम सभी श्रेष्ठ योग की गहन अनुभूति की ओर। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के बीच आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता का प्रकाश चारों फैल रहा है, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे इस धरती पर मैं आत्मा रूपी चैतन्य सितारा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य सितारे से दिव्यता की चमक, अष्ट शक्तियों की चमक चारों फैल रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नजर मुझ भाग्यशाली आत्मा पर पड़ चुकी है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार जा रही हूं। आकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि से मैं फरिश्ता अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, करता ही जा रहा हूं। बाबा की सुखद दृष्टि का वरदानी दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ते हुए जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पांच गई हूं। कितनी सुंदर कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। कितना प्यारा घर है यह परमधाम। मेरे प्राणों की प्राण प्राणों से भी प्यारे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुस ज्योति बिंदु आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नए नौ के नूर बन चुके हैं। बाबा मेरे दिल की दुनिया में मेरे संसार मुझे अनुभव हो रहे हैं। बाबा शक्तियों के सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की निरंतर वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य परमात्मा से प्रचंड शक्तियां अद्भुत शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पालाभार में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म बिंदु डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। उनके सानिध्य में परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य, मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। भाग्य विधाता के साथ में भाग्यशाली आत्मा बैठकर भाग्य लूट रही हूँ और लुटा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मेरा यह शरीर रूपी घर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो चुका है। मेरे घर में आत्मा का दीपक जल चुका है, अखंड जल रहा है। सच्ची दिवाली मैं मना रहा हूँ। बाबा से मैंने बहुत कुछ पा लिया। बाबा मेरी एक अंतिम आश है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार की ज्योत अखंड जलती रहे, बस चलती ही रहे। और संगम युग की हर घड़ी मैं आत्म ज्योति आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं। बाबा बस आपके ही संग में पलती रहूं। बाबा मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति।